علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی ادغام کے بارے میں پڑھا اور اس کی ریویژن اور کچھ تطبیق کی. انشاءاللہ آج ہم کچھ ایکسیپشنز دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام ہمیشہ دو ورڈز کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی اگر پہلا والا ورڈ نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے بعد میں آنے والا جو ورڈ ہے وہ یرملون میں سے کسی حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ وہاں پر ادغام کرتے ہیں، لیکن ود ان اے ورڈ یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا، ایک ہی ورڈ کے اندر یہ اپلائی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں چار ایسے ورڈز ہیں جن میں نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہے لیکن ہم وہاں پر ادغام نہیں کرتے، اور یہ جو فور ورڈز ہیں یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. الدنیا، بنیان، قنوان، صنوان، صاد صاد سے صنوان. سو دنیا، بنیان، قنوان، صنوان. تو آپ اس میں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یرملون یعنی یا آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے، لیکن ہم یہاں پر ادغام نہیں کرتے بلکہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. اس اظہار کو ہم کہتے ہیں اظہار مطلق. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہر اظہار کے ساتھ آپ کو نام جو ہے یعنی اظہار کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی کہنا ضروری ہوتا ہے، جیسے اظہار الحلقی. تو یہاں پہ جو اظہار ہو رہا ہے ان فور ورڈز میں، جی یہ بالکل یہ ایک ہی ورڈز میں پایا جا رہا ہے، یعنی دنیان ان ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، بنیان ان ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، قنوان ان ساکن کے بعد واو ہے، صنوان اگین ان ساکن کے بعد واو ہے. تو یہ ایک ہی ورڈ میں ہے اور یہاں پر ادغام نہیں ہوتا اور ہم اسے کہتے ہیں اظہار مطلق. اور اظہار مطلق صرف ان فور ورڈز میں ہے، میم، ض، لام، قاف، مطلق. پھر اس کے بعد یہ تو ایکسیپشن ہوگی، اور یہ ایسی ایکسیپشن ہے جس میں ود ان اے ورڈ آ جاتا ہے اور ود ان اے ورڈ ادغام نہیں ہوتا. کچھ ایسی ایکسیپشن بھی پائی جاتی ہیں جن میں دو ورڈز میں کنڈیشن پوری ہونے کے باوجود ادغام نہیں ہوتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں سے نمبر ون سورۃ یاسین آیت نمبر 1 اور 2، اس میں آپ دیکھیں یاسین جو آیت نمبر 1 ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے نون ساکن کے اوپر، اور جو سیکنڈ آیا ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے والقرآن. تو بیسیکلی تو ان کے بیچ میں آیا ختم ہو رہی ہے، تو عموماً ہم سٹاپ کر کے ہی پڑھتے ہیں، یعنی یاسین والقرآن الحکیم، یعنی آپ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں، یعنی دو آیتوں کو ملا کر پڑھنا چاہیں، تو بھی آپ سین یعنی نون کو آگے والے واو کے اندر ادغام نہیں کریں گے، بلکہ سین پورا پڑھ کے پھر آپ واو یعنی ادھار کے ساتھ پڑھیں گے. یاسین والقرآن والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اظہار ہوگا. اسی طرح سے سورۃ القلم آئے نمبر 1، اس میں بھی یہی حکم آ رہا ہے نون. تو جو نون ہے اس کی اینڈنگ نون کے اوپر ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ورڈ آ رہا ہے والقلم وما يسطرون، اگین واو. تو یہاں پر بھی بیچ میں سٹاپ کا سائن ہے، تو آپ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں دونوں سینٹینسز کو تو پھر آپ ادغام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. نون والقلم وما يسطرون. اس کا ایک اور ایکسیپشنل کیس ہے اور وہ ہے سورۃ القیامہ آئے نمبر 27، जिसमें वर्ड आता है वकील मन रोक। तो आप यहां पर देखिए मन नून साकिन के ऊपर पहला वर्ड खत्म हो रहा है और सेकंड वर्ड यानी रोक रो से स्टार्ट हो रहा है। हुक्म के मुताबिक हमें से मब रोक पढ़ना चाहिए लेकिन हम यहां पर इसको मर रोक नहीं पढ़ते। हफ्सन आसम इन तरीका शातबिया के मुताबिक यहां पर कैसे पढ़ेंगे, सख्त के साथ। सख्त टर्म से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हमने सूरतुल अनफाल और तौबा को मिलाने का भी एक तरीका पढ़ा था जो कि वसल भी सख्त था और यहां पर सीन का साइन भी है। तो यहां पर आपने क्या करना है, सख्त करना है। अगेन सख्त के लिए याद रखें कि ब्रेथलेस पॉज होगा जिसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा। वकील मन रोक वकील मन रोक, ठीक है, सिर्फ आपने आवाज तोड़नी है और आपने रुकना नहीं है। अगर आप यूं पढ़ेंगे वकील मन रोक तो गो के आप सांस ना भी लें तो भी ये सख्त कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका ड्यूरेशन इतना था जिसमें कि कोई सांस ले सकता है, इसलिए इसके लिए ड्यूरेशन का शॉर्ट होना भी जरूरी है। तो ये इदगाम के कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। एक वो एक्सेप्शंस थे जिनमें के इदगाम की कंडीशन विद इन अ वर्ड हो रही है तो विद इन अ वर्ड हम इदगाम करते नहीं, और कुछ वो एक्सेप्शंस थे जिनमें दो वर्ड्स के बीच में शराइत पूरी होने के बावजूद आप इदगाम नहीं करते, ठीक है, और आप इजहार करके पढ़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल के ऊपर आ जाते हैं जो कि है इकलाब, ठीक है। इकलाब, इकलाब का वर्ड बेसिकली कल्ब से है और कल्ब जैसे कि आप जानते हैं अरबिक में हार्ट को कहते हैं क्योंकि उसकी भी कैफियत जो है, उसकी भी जो हार्ट की कैफियत होती है वो भी अप डाउन लगी रहती है। नहीं, कभी कुछ सोच रहा होता है, कभी कुछ सोच रहा होता है, यानी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर तरह की चीजें उसके अंदर आ रही होती है। इसी तरह से यानी क्विक चेंजेस के लिए या चेंज के लिए जो ये वर्ड है इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भी हम जो काम करेंगे वो यही करेंगे कि कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। इकलाब के अंदर इसमें होता यह है कि अगर नून साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन में पाए जाने वाले नून को मीम से बदल दिया जाता है, उसको चेंज कर देते हैं हर्फ मीम से, ठीक है। इसमें स्कॉलर्स की कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पाए जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जब आप इकलाब करें तो आपके जो लिप्स हैं उनमें पेपर गैप होना चाहिए, यानी मीन बादी यूं करके, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जी पेपर गैप से नहीं बल्कि आपके लिप्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे लेकिन आपने उनको दबाना नहीं है। ये बहुत ज्यादा जैसे दबाते ना मिम, उस तरह से नहीं करना, बल्कि आपके लिप्स ज्वाइन होंगे, बीच में गैप नहीं होगा लेकिन बहुत सॉफ्ट ज्वाइनिंग होगी उनकी। मिम 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 बादी, यानी ज्वाइन होंगे लेकिन आपने उन्हें प्रेस नहीं करना, बहुत जैसे हम मीम के लिए थोड़ा दबाते उस तरह से नहीं, उससे थोड़ा वीक हिट होता है। इसी तरह से इसमें ये इख्तलाफ पाया जाता है और हम जिस तरीके को फॉलो करते हैं उसमें लिप्स को ज्वाइन किया जाता है, यानी आप लिप्स को ज्वाइन करके इख्तलाफ की अदायगी कर रहे होते हैं। ये विदिन अ वर्ड भी होता है और दो वर्ड्स के बीच में भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड बताया मिम बादी, तो ये दो वर्ड्स के बीच में है, और विदिन अ वर्ड जैसे अम्बिया अम्बिउनी अम्बिहुम, तो विद इन अ वर्ड की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक ही वर्ड में हुक्म पूरा हो रहा होता है और दो वर्ड्स में भी हो रहा होता है। अब हम नून साकिन के लास्ट हुक्म पर आ जाते हैं। लास्ट जो इसका हुक्म है वो है इख्फा, ये वर्ड है खफी से छुपा हुआ, और इख्फा में भी हम एक्चुअली यही करते हैं कि नून को छुपा के पढ़ते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसको उसके मखरज से अदा नहीं किया जाता, या उसको उसके आप मखरज से नून को अदा नहीं करते बल्कि छुपा देते। आप छुपाएंगे कहां पर, ये एक बहुत अहम सवाल है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये होता कहां पर है। तो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून बा और हरूफुल हलकी के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर हम नून को छुपा कर पढ़ेंगे। तो इख्फा जो है वो बहुत सारे लेटर्स पर होगा, जैसे ता में, जैसे सा में, जीम में, दाल में, राल में, बहुत सारे लेटर्स में होगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इख्फा करने का कोई एक तरीका है। आप ये कह सकते हैं कि इख्फा तकरीबन तमाम ही लेटर्स में डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट उसकी साउंड आ रही होती है। और इसको आपने छुपाना नेक्स्ट लेटर के मखरज में होता है, ठीक है, जो नेक्स्ट लेटर है उसके मखरज में नून की आवाज को छुपाया जाएगा। इसमें आप देखें कि अगर बाद में आने वाला हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद में आने वाला हर्फ हैवी लेटर्स में से है तो इख्फा भी हैवी होगा। अगर वो लाइट से है इख्फा भी लाइट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलक तन फखलक, अब आप देखिए तन तनवीन के बाद फा आ रहा है, तो अब इस फा में आपने क्या करना है कि जो आपके ऊपर वाले दांत हैं वो नीचे वाले होंठ को टच करेंगे जब आप इख्फा करेंगे, बिल्कुल ये पोजीशन होगी अलक तफ, बिल्कुल ये पोजीशन। इवन टंग की भी सेम पोजीशन होगी, टंग की भी बिल्कुल यही एज इट इज पोजीशन होगी, सिर्फ आपने थोड़ा हल्का रखना है टीथ को और जैसे आप फा बोलना चाहेंगे आप थोड़ा उन्हें और दबा देंगे, यानी आप पहले से ही पोजीशन फा की ले चुके हैं, अब आपने पोजीशन चेंज नहीं करनी, आपने सिर्फ उसको थोड़ा दबा देना है अलकोतफा, यानी जिस जगह पर थे आपके टीथ उसी जगह के ऊपर आपने थोड़ा दबा दिया, ना टंग की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है ना टीथ की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट जो है वो वही रहेगी। फिर इसी तरह से आप देखें जैसे वर्ड है अंता अंता, अब इस अंता में अगर हम देखें तो अब नून साकिन के बाद क्या आ रहा है ता, हर्फ ता आ रहा है, तो अब जो आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी अत्ता अत्ता, ठीक है, यानी टा के मखरज के ऊपर टिप ऑफ टंग ऊपर वाले गम्स के बहुत क्लोज होगी, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा करीब होगी लेकिन उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं जा रहा होगा, बहुत दूर भी नहीं रखनी आपने, अगर आप दूर रखेंगे तो भी यू साउंड आएगी, यानी आपके इख्फा में टा का हल्का टच आना चाहिए अंता, पीछे से जबान आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर आप पीछे से उठा देना तो ये यूं साउंड देगी अंता, तो ये काइंड ऑफ दौ का इख्फा है, लेकिन दौ का इख्फा एक्चुअली इससे ज्यादा हैवी होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये उसी में कंसिडर किया जाएगा, नहीं गुन्ना तो होगा, गुन्ना तो है इसमें, आप देखिए नाक में आवाज लेके जा रहे ना अंता या औ, ठीक है, तो नाक में आवाज जारी है गुन्ना होगा। फिर इसी तरह से अगर शीन का मखरज हो जी, हम ये नहीं कहते कि नेजल साउंड का इजहार है या उसका इख्फा है, नेजल साउंड होती है यानी वो प्रेजेंट होती है, उसको किसी तरह से आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, या नेजल साउंड है या नेजल साउंड नहीं है, ठीक है, तो नून का इख्फा है, नून का इख्फा क्यों है, क्योंकि वो अपनी प्लेस से नहीं आ रहा ना अंता, अगर ऐसे पढ़ा जाए तो फिर नून को जाहिर किया जा रहा है, यानी उसको उसके मखरज से बोल रहे हैं, हम उसको उसके मखरज से नहीं बोल रहे, तो सिर्फ ये डिफरेंस करें, ओके। इसी तरह से जैसे अगर शा शीन आ जाए बाद में तो फमन शा, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे फमशा, यानी बिल्कुल ये पोजिशन फमन, तो आप फील कर सकते हैं कि अब आप देखिए इसमें थोड़ा शीन का टच आ रहा है फमन शा। इसी तरह से जीम अगर आ रहा हो तो उसका भी ये इख्फा होगा, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज होगा। फिर इसी तरह से ओके जैसे मैंने आपको बताया कि हम ना नेक्स्ट लेटर के मखरज के करीब जाते हैं इख्फा करते हुए, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनमें आप नेक्स्ट लेटर के मखरज को एक्चुअली टच करते हैं इख्फा करते हुए, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेटर के मखरज को क्या करते हैं, टच करते हैं। और ये कौन से लेटर्स हैं? थ्री लेटर्स हैं, काफ, ऑफ और फा। काफ, ऑफ, फा, ये तीन लेटर्स हैं जिसमें आप मखरज को हिट करते हैं। काफ के मखरज को तो या इसके इख्फा को तो मैंने पहले क्लास में काफी दफा एक्सप्लेन किया है। ये जो काफ का इख्फा होता है ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अक्का, अक्का, यानी बिल्कुल वो पोजीशन आपने लेनी है, अक, ये हिट होना चाहिए, ये एरिया आपका अंका, अक्का, अंका, आप लगाएंगे उसे शिद्दत से लगाएंगे, सिर्फ आपने क्या करना है नाक को, आवाज को नाक में लेके जाना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं, ये जो इख्फा है ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में भी। जैसे वर्ड पंखा, पंग, पंखा, फिर इसी तरह से वर्ड अंकल, तो आप इसे अंकल यू नहीं बोलते, अंकल यू नहीं बोलते, ना ही अंकल यू बोलते, ठीक है। तो हिट द पार्ट अंकल। इसी तरह से पिंक, मिंक, यानी अगर कसरा आ जाए पीछे वाले लेटर के ऊपर तो पी, पिंक, मिंक। इसी तरह से मंकी, मंकी, यानी वो सारे जो वर्ड्स हैं इसमें क्या हो रहा है, काफ का इख्फा हो रहा है। तो आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी जो वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास कुरान पाक में, जैसे मिंकुब, अंकालद, यानी इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उनको फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ के इख्फा के साथ। फिर इसी तरह से कौफ का जो इख्फा होता है उसमें भी आपकी जो टंग है वो कौफ के मखरज को हिट करेगी। एक जनरल वर्ड देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ, तो आप हेवी करके इसे पढ़ेंगे ओ। इसी तरह से जो फा का इख्फा है, जैसे अभी हमने जी कुतुबुन कय्यिमा, ओके जी कुतुबुन कय्यिमा, तो आपने बूं यानी बा को लाइट रखना है, फिर आपने हेवी इख्फा करना है और को कुतुबुन कय्यिमा। ओके उम्मतुन कुद जी मियुं कुव्वा, तो ये बेसिकली सारे वर्ड्स हैं जिसमें कौफ का जो एरिया है उसको आपने हिट करना है, ठीक है, कौफ के मखरज को। ओके फिर जैसे मैंने आपको वर्ड बताया फा, इसमें भी एक्चुअली आपका टच आ रहा होता है, तो फा इटसेल्फ लाइट टच है ना, यानी उसमें बहुत शिद्दत नहीं है, काफ और कौफ में आपको जरा स्ट्रांगली हिट लग रहा होता है जब आप इख्फा करते हैं। मिंकुम, आपको लगता है कि जबान अच्छी से लग गई है। इसी तरह से जो कौफ का इख्फा है उसके अंदर भी, लेकिन फा में आपको इतना शदीद हिट नहीं लगता, उसके रीजन ये है कि फा इट्सेल्फ थोड़ा लाइट लेटर है, नहीं उसके अंदर जो हिट होता है ना वो बहुत शदीद नहीं होता, इसलिए। तो जब आप फा के साथ बोलेंगे जैसे अल अन्फा, अन्फा, तो आप टच कर रहे हैं आपके टीथ, आपके टीथ वहां पे फा के मखरज पे टच कर रहे हैं जी। जैसे म्यूं, डीप पार्ट को ऊपर उठाएंगे, मुंह में प्रेशर बिल्ड करेंगे, यू नहीं म्यूं, म्यूं, यू नहीं करना, म्यको, म्यको, यानी उसे लाइट करके नहीं करना, उसमें हैवीनेस भी क्रिएट करें। ठीक है, इस तरह से। ओके तो ये तीन लेटर्स हैं। फिर आप देखें कि शायद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा हो और मेरे जहन में भी बहुत दफा ये सवाल आया कि ऐसा क्यों है कि कुछ लेटर्स के लिए हम यानी हिट कर रहे हैं, मखरज को हिट कर रहे हैं और कुछ लेटर्स में हिट नहीं कर रहे, इसकी क्या रीजन है, यानी क्यों ऐसा है कि आप इख्फा के अंदर, चले लाइट लेटर और हैवी लेटर का तो समझ में आ रहा है कि लाइट होना चाहिए या इख्फा हैवी होना चाहिए, मगर इन तीन लेटर्स में हिट करें और बाकी सब में हिट ना करें, तो ऐसा क्यों है। तो आप देखिए कि जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करती हूँ तो मेरे समझ में ये चीज आती है कि अगर जबान के वस्त से जो लेटर्स आ रहे हैं या जो टिप से लेटर्स आ रहे हैं, अगर आप उनके मखरज को टच कर दें तो वो नून की ही साउंड देंगे 19-20 डिफरेंस से. आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि अगर आप टिप ऑफ टंग को गम लाइन के ऊपर रखें ऑन दी मखरज ऑफ टा और वहां पे आप दबाकर इख्फा करने की कोशिश करें तो वो नून की आवाज देगा अंता. ठीक है, अंता. अगर आप सेंटर से बोलें तो ये कैसी साउंड आएगी, अंता अंता. तो ये भी इख्फा है, सॉरी ये भी नून की प्रॉपर साउंड आ रही है. यानी इसका जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि आप बोलने वाले को यही लगेगा कि आप नून बोल रहे हैं मगर आपका मखरज बहुत अच्छा नहीं है. सही. जबकि अगर आप डीप पार्ट से जो लेटर्स आ रहे हैं, छोटे लेटर्स में तो है ये इजहार, जो डीप पार्ट ऑफ टंग से लेटर्स आ रहे हैं और जो लिप से लेटर आ रहे हैं जिसमें इख्फा हो रहा है, क्योंकि लिप से सिर्फ एक फा में इख्फा हो रहा है, बाकी किसी लेटर में इख्फा नहीं हो रहा. वाव में इदगाम है, मीम में इदगाम है, बा में इक्लाब हो गया, तो सिर्फ एक फा में इख्फा है. और जो अक्सर लसान के लेटर्स हैं जब आप उनको हिट करते हैं तो नून की साउंड अच्छी खासी डिफरेंट हो जाती है. वो सही वाजे पता चलता है कि आपने नून को हाइड किया, इसलिए वहां पे हिट कर लेंगे और यहां पे हिट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप यहां पे भी हिट करके उसको नून को छुपाने की कोशिश करेंगे तो आपका नून छुपेगा नहीं बल्कि वो जाहिर हो जाएगा. इसलिए यहां पर आपको छुपाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है कि आपके जो टंग में जो है वो प्रेशर ना आए. अगर प्रेशर आ जाएगा तो फिर वो नून की ही साउंड दे देगा. जबकि काफ कॉफ और फा को दबाने से भी आपकी नून की वाजे साउंड नहीं आती, वो इख्फा ही लगता है. जैसे अंकल, आप देखिए इट्स रियली क्लियर. हो सकता है आपको बहुत बिगिनिंग में इसका डिफरेंस लगे नहीं, आप नून ही बोल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि इट्स लाइक देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन बिटवीन क्लियर नून साउंड और जब आप अंकल काफ के मखरज का इख्फा कर रहे होते हैं. और ऑफकोर्स जब आप हेवी का करेंगे तो वो और डिफरेंट हो जाएगा. तो वल्लाहु आलम, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद यही रीजन है कि अगर आप सेंटर वाले पार्ट यानी टिप और जो सेंटर पार्ट से लेटर्स आ रहे हैं अगर आप उन्हें हिट करते हैं तो हिट करके इख्फा करने की कोशिश करेंगे तो वो इख्फा की साउंड देने के बजाय इजहार की साउंड देंगे. जबकि डीप पार्ट के और लिप्स के जो लेटर्स हैं जिनमें इख्फा है अगर आप उन्हें टच कर लेते हैं, कर भी लेते हैं, तो भी वो इख्फा ही रहेगा, वो इजहार की तरफ नहीं जाएगा. ठीक है, फिर इसी तरह से इख्फा भी विद इन अ लेटर भी होता है और टू लेटर्स के बीच में भी होता है, लेकिन ये ऐसा आप कह सकते हैं हुक्म है जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. इख्फा के अंदर पीछे वाली हरका का इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए. यानी जैसे ये भी वर्ड किसी सिस्टर ने लिखा था ना, कुतुबो, तो आपने बू यानी होंठों को गोल किया है बू के लिए. अगर आप होंठों को गोल रखकर ही इख्फा करेंगे तो इख्फा के अंदर बम इफेक्ट आएगा. ठीक है, जो कि फिर उसकी यानी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक लहन खफी ऐड करें. कुतुबुंग को नहीं, कुतुबुंग यानी आपने पुल बैक करना है. कुतुबुंग को ठीक हैवी होना चाहिए लेकिन आपने उसको सर्कल से नहीं बोलना. तो ये चीज इसको ध्यान में रखना कि जब आप उसको प्रोनाउंस करें हो तो पीछे वाली जो हरकत है उसका इफेक्ट उसके अंदर नहीं आना चाहिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मीम के अहकामात पढ़ेंगे. तो फिर अभी हम थोड़ा सा फिर एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं जी. लास्ट यानी ओके, जब आप बम्मा के बाद इख्फा कर रहे हैं ना, किसी भी बम्मा के बाद, तो आपका जो इख्फा है वो होंठों के गोल गोलाई से नहीं आना चाहिए जी. अक्सर लिसान वाले लेटर्स में आपका हित होगा, जैसे काफ है, अंकालन आप टच करेंगे और कौफ के साथ भी आप टच करेंगे. जैसे ये सूरतुल मुज़म्मिल में आ रहा है ना वर्ड, ये भी इख्फा है, अवेंकुस, तो आपने हिट करना है अवेंकुस, कौफ के मखरज को अवेको, ये एरिया टच होना चाहिए. शीन के मखरज में सेंटर पार्ट ऊपर उठता है सॉफ्टली, यानी बहुत ज्यादा नहीं. जैसे मिनशा या अंशा अंशा, ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट या के करीब करीब होता है. या में तो देखिए ऐसी साउंड आने लग जाती है ना, इसमें अब चूंकि लगाम नहीं है इसलिए वैसी साउंड नहीं आएगी, लेकिन ये उसके करीब करीब होगा। यानी आप आई बोल के भी फील कर सकते हैं कि जबान का कौन सा हिस्सा उठेगा शीन के लिए, लेकिन इसकी साउंड ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये इख्फा है, ठीक है। लेकिन आप पार्ट फील कर सकते हैं कि आपको कौन सा वाला पार्ट उठाना है। जी बिल्कुल ऊपर नहीं लगेगा। ओके इसमें देखिए जैसे आई नंबर 3 में भी मैंने जिक्र किया ये इख्फा आ रहा है कौफ का, अवयों कुस यानी कौफ की वजह से नून का इख्फा आ रहा है, तो अवयों कुस उसको हिट करेंगे। फिर इसी तरह से आई नंबर 5 में देखिए, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आई नंबर 5 में आ रहा है सूरतुल मुज़म्मिल में तनवीन के बाद सा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, कौलसा यानी टिप आपके ऊपर वाले दांतों के एजेस पर होनी चाहिए और बहुत सॉफ्टली कौलसकीला। फिर आप देखें 7 में आ रहा है तो की वजह से इख्फा, सब हा हा लाइट रखें फिर उसके बाद इख्फा हैवी रखें, सब हौला सब हौला, ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मीम साकिन के अहकाम करेंगे और फिर जो चीज आपको अगर इसमें से कुछ पूछना हुआ तो हम मजीद इसको करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। ओके सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।